ये ग्रंथ हमने प्रकाश करने की इच्छा हम कर इस तरह से आज से सुनने मैंने कहा गुरु जी मैं महाराज जी के पास रहता हूं और उनसे जो कुछ सीखने को पाने को हम लोग सीख रहे हैं कर रहे हैं परंतु मेरी इच्छा है कि आप हमें और कुछ सिखाएं। आपके पास औलाद ज्ञान भंडार जो कि समुद्र के समान और ऐसे समुद्र के समान और इतने श्लोक कहा करते कहां कहां से बोलते हैं और कितना श्लोक सुनाते हैं जिसकी कोई शिकायत नहीं। मैंने पूछा गुरु जी आपको इतना स्वर याद कैसे हुआ कहां से आपने सीखा और कैसे आपने अध्ययन किया क्या किया। तब उन्होंने अपने बचपन की कहानी सुनाई भक्ति विनोद श्री भक्ति विनोद इंस्टीट्यूट में पढ़ते समय परमगुरु महाराज जी ने जैसे उन्हें श्लोक सुनाया और सभी ने श्लोक सिखाया इसी तरह से श्लोक सीखे गए। दूसरी ओर बोले कि मेदिनीपुर में जब कि गुरु उन्होंने कहा उनके गुरु जी जाने परम गुरु महाराज जी जब किताबों को लिखने के लिए सारे प्रमाण को लेकर संग्रह करना होता और उनको भेजा तब वे बोले कि मैं मेदिनीपुर में गया वहां एक प्रार्थना प्रभु थे तो उनके साथ वहां के लाइब्रेरी के सारे किताबों को देखने को मिला और एक एक करके पूरा छंटा चला गया देखता गया और सारा डोनेशन लाया तो वो सब देखने से मुझे एक तरह से पूरा पढ़ा हो गया इसलिए सभी शास्त्रों को पढ़ लिया। इसी प्रकार मैंने एक बार कहा गुरु जी आप हमें और कुछ सिखाइए क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपसे भी कुछ गैर गरीब संग्रह करो और आपसे हमें कुछ प्राप्त हो। तब वे बोले महाराजी को और भूल को कभी भी अंदर मत देखना कभी भी भेद दृष्टि से मत देखना जो हमारी शिक्षा है उन्हीं की शिक्षा है उन्हीं की शिक्षा ही हमारी शिक्षा है दोनों में जो कोई अंतर देखेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। यदि प्रभु महाराज के और गुरु महाराज के परस्पर यदि निश्चित रूप से सर्वनाश के गुरु महाराज बोल अमन की तीन चीज एक बार पत्र को चलती ही जा रहे हैं तेरे बोलने देखो पर कर्ज के गति नहीं देखी कौन काले जर पर चर्चा पर निंदा करे दादी कौन काले कौन समय गति है वहां प्रभु कृपा करुणा के सारा सुर पर आरत बच्ची आवाज तेरी बोलने की एक बार पत्र मत दिए एक बार पत्र के द्वारा उन्होंने कहा जो मुक्त होता है वही दूसरों को उद्धार कर पाता है मुक्त कर पाता है जो तैरना जानता है वही डूबते हुए दूसरे को बचा सकता है जिसको तैरना आता नहीं जो मुक्त नहीं होता दूसरों को कदापि मुक्त नहीं कर सकता। इस प्रकार गुरु ने बहुत से तत्व विषय तत्वों को सिखाया और बताते हम लोग जब कभी जाते कुछ न कुछ कभी भूमि करके कुछ न कुछ उल्टा सीधा प्रश्न करते पूछते थे गुरु जी यद्यपि वे गंभीर है फिर भी हम लोगों को अपना बाल ध्यान करके वे सुनाते। एक बार मैंने पूछा कोलकाता में गुरु जी इतना सारा मंदिर है आपके और इतने मंदिर है तो आपको कौन सी जगह अच्छा लगता है कहाँ आप रहना पसंद करते हैं। उस समय गुरु जी बोले कि मुझे सिलीगुड़ी में मिलन पल्ली में अच्छा लगता है। मैंने कहा कि हूँ आप इसका भी उत्तर दीजिए क्यों आपको अच्छा लगता है क्या खास है। उस समय गुरु जी बोले बोले देखो मैं सोच आपके इतना सारा मंदिर है और जहाँ कहीं जाऊँ लोग खूब सेवा करेंगे खूब खिलाएंगे पिलाएंगे कोई हरिकथा सुनने को नहीं आएगा कोई हरिकथा सुनना नहीं जाएगा सिलीगुड़ी जाने से कम वहां कुछ हिंदुस्तानी भक्त लोग और भी कुछ बंगाली भक्त लोग कम से कम में बैठ करके सुनते कुछ कथाओं को हम कहना है। जब हम लोग कथा कीर्तन नहीं करे कुछ बोले तो दिन भर खाए पिए से हम लोग का जीवन ही दिन ही नहीं निकलता है और हमारा दर्शन ही नहीं होता। इससे मुझे अच्छा लगता है कि कुछ लोग कई कथा तो सुनते। तो इस प्रकार जब जब कुछ न कुछ ऐसे पूछते थे सुनता था उत्तर दिया करता था। एक बार मैंने गुरु जी से शरण लेकर पूछा कि गुरु जी महाराज जी के पास में जब कभी जाऊं और कभी कभी ऐसा भी हुआ करता है कि जब कोई काम नहीं है महाराज जी पूछ लेते हैं कोई काम है अभी। मैंने कहा कोई काम तो अभी ठीक नहीं है और कोई काम तो महाराज जी कहते हैं जा वेदांत और पूरा पश्चिमल उठा कर सभी ग्रंथों से ये जीव स्वरूप जीव तत्व को निकाल कर ले आओ छाड़ो। तो हम देखते हैं कि जीव तत्व हमेशा यही बात आती है अब जीव कर शरण और ये तो हमेशा ये दिमाग माता को लेकर दे जाते हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं पर ये तो हमेशा ही सुनते रहे। तो गुरु जी से पूछा कि गुरु जी जीव तत्व पर बहुत सारी बातें आती है और बहुत से लोग बहुत कुछ कहा करते हैं आपका भी विचार हम सुन लें तो आप हमें कुछ बताइए। तो शरण गुरु जी इतने प्रसन्न हुए प्रसन्न होकर के दो तीन घंटे तक बोलते ही चले गए। भक्तिवीर ठाकुर जी के किताब को पुस्तक खोल करके उन्होंने पढ़ करके और पूरा के पूरा किताब एकदम बताते चले। मैंने कहा बहुत हो गया अभी तो समाप्त कर तो भी नहीं गुरु जी बोलते ही चले। एक बार सिलीगुड़ी में मैं गया तो गुरु जी के पास में प्रणाम करके मैं खड़ा था। इतने में शरीर अस्वस्थ तो होते हुए भी गुरु जी रस तत्व पर विवेचन कर रहे और बोलते जा रहे बहुत सारे रस तत्व पर पांच रस पर और रस तत्व पर खूब विवेचन कर रहे और खूब बोलते जा रहे और हमें सुना रहे। इतने में भजन पूर्ण जो कि गुरु जी का सेवन था उस समय प्रायः डेढ़ दो घंटा पार हो गया। गुरु जी बोलते जा रहे मैं खड़ा हूँ सुन रहा और मुझको ही बोले भजन गुरु बोले गुरु जी आपकी तबीयत खराब है आप इतने देर बोलते जा रहे हैं हम तो बोलना बंद कर दीजिए। उस समय गुरु जी उस पर जुए रहे हुए हैं तुम जानते हो मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ जब तुम बाहर निकल जाओगी तुम सुनने जो कर लीजिए जो बात मैं कह रहा हूँ उसी कह रहा हूँ उसको कह रहा हूँ। तो इस तरह से गुरु जी का अपार स्नेह करुणा और बातों को सिखाते थे। इसी प्रकार जिन्होंने असीम अपार करुणा की उनके साथ जीवन में एक दिन झगड़ा भी किया था। संन्यास के पहले दिन रात में जाकर के गुरु जी के घर में उन्होंने बुला लिया बोले कि आज तो झगड़ा भी कर लेगा कि गुरु जी से सब प्रकार की बातें होती है एक दिन झगड़ा भी कर लिया जाए जीवन में ये भी शौक मिटाना पड़ेगा। तो अब गुरु जी बोले तुम्हें संन्यास हम देख रहे नहीं करें हम कहते नहीं हम संन्यास दे क्यों देखे बताइए किस कारण और इसी बात पर बहुत ज्यादा बहस करता चला गया बहुत झगड़ा की बात की। तो उस समय गुरु जी ने बहुत सारी अंतर को बातें सुनाई। इसी तरह से आज ऐसे महान गुरु जी जिनकी असीम कृपा करुणा निरंतर हम लोगों के स्मृति पाठ में जागरण होता है वे आज भी नित्य वर्तमान है। जिस समय रूप सनातन में आए उस समय एक बार भागवत सत्ता चला था महाराज से नीचे गुरु जी आए उनकी पूजा अर्चना हुई और बड़े आरती के साथ उन्होंने अपने हृदय का उद्गार वर्णन किया। इस प्रकार जो अत्यंत गंभीर ज्ञान के अपार समुद्र और भक्ति रस के ऐसे चरणों में।
एक तो महाराज में हम सब सीधा बढ़ने गए थे, देखते कि भाई ने बताया नवीन जल्दी जल्दी मांगो, कोई मिशनरी बड़ा है और कोई रोक नहीं सकते, अगर मैं सरेंडर ना करूं केवल से बांध के ले जाएगा, इससे बल्कि सेक्शन में जाना ठीक है। जब हम लोग कलकत्ता में पहुंचे हावड़ा स्टेशन पर, तो हमारे कुछ भक्त लोग टैक्सी लाने के लिए गए, उस समय जी और उनके बच्चे लोग जगन्नाथपुरी से पहुंचे, वापिस जा रहे थे। सिंहानिया जी उनकी लड़की ने गुरुजी को देखा, उधर उधर को पापा जी महाराज जी खड़े हैं। सिंहानिया जी आए, फिर हम लोग को लेकर के अपने बालीगंज से बस वाहन में ले गए, उनके खाने में उतार दिया, मैं गुरु महाराज जी हमारे दोनों पर रस्सी बना कर फिर ले गए, उतर ले गया था। उस समय जब मैं पहुंचा, दोनों जेट तरफ में लोग हंस रहे थे, मैं पूछा बात क्या, किसे हंस रहे हैं, तो जेट तरफ बैठ बिल्कुल खाली है, तुम्हारे जी के लिए सब समय कुछ दो तीन दिन समय के लिए ब्रेकफास्ट करता था। मैं बोलता ये तो बैग आप लोगों के लिए भरा था, सबसे भरा रहेगा, खाली नहीं होगा। दोनों तो में बात कर रहे थे तो बताया गुरु महाराज की, महाराज जी पहले मैं जगह से जाऊंगा, तुम्हें मालूम नहीं पहले मैं जगह से जाऊंगा, मैं हार्ट रोगी हूँ, मैं क्या करूंगा। मैं बताया कि आप दोनों में बात करने का विषय ही नहीं है, ये विषय में बात करना पड़ता है, तुम्हारे को नहीं, मेरा शरीर बिल्कुल खराब है, हाथ खराब है, मैं किसी जी नहीं सकता। तब गुरु महाराज जी ने बताया, महाराज जी आप जानते नहीं, आपके लिए गुरु महाराज ने बहुत बड़ा सेवा बाकी रखा है, जो सेवा विदान समिति के आप ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा ये संभव नहीं है, आपको ही करना पड़ेगा। जब हमारे पहले बार देश प्रचार में गए थे 1996 में, उस समय जब हमारे याद दिलाया, तो महाराज जी रोते चिट्ठी लिखा रहे गुरु महाराज जी को, तो महाराज आप क्या कहा था, अब मैं समझ रहा हूँ, मैं विदेश में आकर के साफा के साथ प्रचार करूंगा, मैं कभी नहीं सोचा था, ये गुरु महाराज पर तो सारी की कृपा है और आप लोगों का भी अशेष आशीर्वाद है, मेरे संभव नहीं था। ये गुरु महाराज जी पहले ही मुझे बता दिया था कि आपको ऐसा काम करना पड़ेगा जो किसी द्वारा नहीं होगा। जब मेरा दीक्षा हुआ था, दीक्षा के दौरान गुरु महाराज जी ने बताया कि महाराज के साथ मथुरा जाना है, मुझे नहीं पता था कि जब चावल मिलेगा ये सब, और कुछ नहीं पता था, मैं सीधा आ गया। कुछ महीने के बाद तो परिक्रमा के बाद यह बहुत गर्म है, जब गुरु महाराज कुछ महीने के बाद आए थे, साथ में सिद्धानंद प्रभु था, मैं बताया गुरु महाराज जी इधर भी अच्छा नहीं लगता बिल्कुल, इतना गर्म ये सहा नहीं आता है। तो गुरु महाराज बहुत उन्हें युक्ति दिया, उनके अब युक्ति का खंडन किया, आखिर में गुरु महाराज ने पूछा चाहिए बता शिष्य का कर्तव्य प्रधान कर्तव्य क्या है, मैं बताया गुरुपाद तत्व की प्रीति विधान करना सबसे बड़ा कर्तव्य है, तो बताइए भगवान की स्थिति का सर है सभी सब परिस्थिति में भगवान जीते हैं क्या स्थिति है तो कहते हैं एक स्त्री प्रकृति मुखरा द्वितीय चंचला च पुत्र वीर भुवन विजयी मनमतो दुर्निवार शयनात्तो पुष्प सज्जा वाहन पर्णधारी स्मारण स्मारण सभ्य चैतन्य दारुतो मुरारी तुम्हारा जी का ऑटो है तुम्हारा जी तो बता दे भगवान के दो शक्ति है एक लक्ष्मी जी एक सरस्वती भगवान कह रहे एक स्त्री प्रकृति मुखरा सरस्वती देवी बहुत टकटी है बहुत बोलती है मचाल है और दूसरा लक्ष्मी चंचला है और क्या करूं ये दो पत्नी है दो शक्ति है एक तो बहुत मुखरा है चंचला है क्या करूं सोचा कोई बात नहीं बेकार बेटा के साथ जीवन गुजारा करूंगा और बेटा भी ऐसे निकला पुत्र भी एक भुवन विजयी मन मतो दुर्निवार काम दे
किसी की बात नहीं मानता
किसी का बात नहीं मानता पूरा जगत को बांध करके रखा है सबको नाम लगे करके रखा है क्या करूं
तो सोचा
तो मैं थक गया पुत्र भी एक भुवन विजयी मन मतो दुर्निवार तो जाकर सीधा पास सो जाऊं दिमाग ठंडा होगा समुद्र कहा स्वयं आप दो सज्जा जाकर सीधा समुद्र में समुद्र पानी है तो दिमाग में ठंडा हो जाएगा किस तरह क्या है सर्पों का किस तरह है जाओ कैसे वाहन चाहिए समुद्र की से जाओ कैसे वाहन वर्ण गाड़ी पहले कहते सब लोग अपने वाहन ले लिया सुन करके मेरे बचरे तो चिड़िया वो कौन है गोरू जी गोरू के सामने दुश्मनी है देखो ये जगत में मैंने पूछा कि सब लोग भजन करने मठ में आए हैं वो लोग बहुत उन्नत हो जाते हैं क्यों नहीं होता कारण क्या है तब उन्होंने बताया कि देखो एक समय एक बंदर को बचाने वाले बंदर को ले जाकर खेलते था तो पैसा रोजगार करते तो बंदर क्या रहे हैं कि किसी ने सादा उतारा वही सिखाया नहीं कई खड़ा गिरी डॉक्टर कोई किया गमी क्या कहूंगा सीता नाथ को मैंने क्या चली सही बंसर भगवान वैद्या की चली किसने सागर उतारा कौन हनुमान जी वही बंदर कुल में ही आए थे रामचंद्र भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की शक्ति सीता देवी को रावण मरने के उपरांत ढूंढने के लिए हनुमान जी सबसे पहले सागर को उदार सागर को उतार के लंका में गए थे और कोई क्या में सुग्रीव भी बंदर कम समय आए आकर के भगवान से विनती की कोई उखाड़ा दीदी डॉक्टर समुद्र मंथन के समय हनुमान और बहुत से बंदर जाकर के गिर पर था जो लाते थे समुद्र मंथन के लिए और बंधन के लिए कोई सिखाया नहीं अगर अंतिम समय में बाली मार रहा था सूर्य के लड़ाई में जब रामचंद्र को मारा था उस समय को युद्ध सिखाया था कोई सिखाया नहीं कोई क्या कहूँ सीतानाथ को मैंने क्या चली मैं सीतानाथ रामचंद्र क्या कहूँ मैं पूछना था मैं क्या चोरी किया है जैसे कोई चोरी चोरी करता है तो हाथ में बांध कर उनको ले जाते हैं ऐसे मैंने क्या चोरी किया जो बेटिया जो खेल दिखाता है अपने गले में फांस लगा करके कल तो सुन रहा है ऐसे ही हम सब भगवान के गिरी नाम से होने पर भी जो जितने अधिक शरणागत है वो उतना भी उन्नत लाभ करते हैं जो अपने स्वरण पर अव्यवहार करते हैं वो उन्नत नहीं सकते हैं ले जाते तो बंदर गले में गली बंदर में तो घुमाएंगे हम गुरुपद पर के चल रहे हैं ऐसे सिद्धि करना तब भजन मनोरथ लाभ कर सकता है एक समय कुछ जो विक्रम महाराज जी गुरु महाराज जी मथुरा में आए थे मुझे टिकट के लिए बताया था मैं टिकट करके लाया था मेरी गलती और कैसे जो टिकट एक महीने बाद हुआ जब गुरु महाराज जी के पास चले गए रेल स्टेशन से वापिस आए बताया गुरु महाराज जी वापिस आए क्या हुआ तो बताया टिकट एक महीने बाद है तो गुरुमान जी ने बुलाया तुम्हें तो तखत के नीचे छिप जा मारे जितना भी बुलाया तो शब्द मत करना निकल आने किसी तरह से तुझे तो बहुत पिटाई करेंगे मारे अभी अभी जैसे तू कहते मैं जब निकलता जर्मनी और टिफन को निकलते टिफन क्या जर्मनी दौड़ते अपने से आते दौड़ करके जब टिफन के लिए टिफन करते आ जाओ तो मेरे सामने मेरे बेटे पीछे दे कैसा हिम्मत देख लेता हूँ तुम कैसे पुलिस वाला आ जाओ पहले मुझसे लड़ो फिर उनके पास जाओ फिर आधा पौना ऐसे चला तुम्हारे चुपचाप जाके बाद में पानी पीकर तुम डर गए ऐसे टिंकू एक बार महाराज जी ने हिसाब के लिए भेजा था कलकत्ता मठ में उस समय मारे भगवती में थे समाज आगे उठकर सुदाम स्वभाव थे गुरु महाराज उस समय पढ़ जीवनी लिख रहे थे तो उनको बताया जानू को बुला रखो तो गुरुमा जी के लिए प्रणाम किया अचानक गुरुमा जी बहुत बिगड़ गए बोले हरम ले इसको कहाँ का होता तो ये बताया ये तो हिंदुस्तानी सिंधु का है सजा की आशा है स्थित थे साधु संग का सर्व बोले सिमर भाग वार्ता का नाम साधु ऋषि के इस तरह लाभ ही है मैं कहाँ चेतन चेतन में है पर दिखा सकता है मैं यहाँ दिखा सकता हूँ कोई खास कोई बोला हो चेतन चेतन के लिए दिया निकाल दिया तब गुरु महाराज जी हाथ में पीठ में हाथ करें जो पूर्ण मासांडे पार्सल मास पर इसके अंदर में गिरे क्यों पर मैं गिरा नहीं मैं परीक्षा कर रहा था कि तू मैं ऐसे धागे बिगड़ने को तू घबरा था यानी देखने के लिए मैं किया था जब हमने पार्सल मास कोई चिंता नहीं एक बार गुरु महाराज जी सब लौट में आए उस समय सिपा तीर्थ महाराज जी मैं देवन सब लोग थे मैं श्लोक पूछा ये बताओ सबल तुम साम करो धर्म जब तक मुक्ति रहो सजे और एक तुम प्राप्त किए था ज्ञान मासन प्रसिद्धि का अर्थ बताओ सामने बताया सर ये पुरुष का ही परम धर्म है बता क्यों क्या स्त्री का धर्म नहीं है क्या पुरुष लोग भजन करेगा स्त्री का भजन में अधिकार नहीं है मैं अगर मैं लोग कर लेते पंडित को बुला लिया तो तुम्हें जो बुला के ले आया मतलब को तुम्हें जो नहीं बताया तो क्या स्त्री का भजन में कोई अधिकार नहीं है पर पुरुष का परम धर्म हो गया तो हम लोग पर उत्तर नहीं है सर इतना में से जीवों के लिए पर पुरुष के लिए नहीं जीव के सब के लिए और जब भी कुछ नवद्वीप में कुछ होता पहले गुरु महाराज दोनों में आलोचना होती होके भी तो कसम को पता नहीं चलता था फिर मैं वहां के साथ रहने का सब पता चलता था जब गौ पूर्णिमा के दिन जब गुरु महाराज हरिनाम दीक्षा देते थे पहले मुझे बुलाते थे बोले चल महाराज क्या कर रहे हैं माँ बस ये जाना है पहले मैं समझदार नहीं था क्यों कि आखिर परम गुरु महाराज माँ को अचानक अगर प्रणाम करते माँ जी नीचे उतर के प्रणाम करते तो नहीं बताए महाराज जी मैं पाप का वर्णन लिख करके जा रहा हूँ मुझे आदेश दें तो ये दूसरी साल की महाराज गुरु जी ने बुलाया ऐसे कहा बोले महाराज क्या देख क्या कि मैं आऊंगा मैं गुरु ने बताया गुरु महाराज जी आपका आचार्य आप जाने की क्या जरूरत मैं महाराज बुला के लाता हूँ पर हर व्यक्ति नहीं समझता जो पूछता वो करो मुझे पूछना हो बोले आज मेरे जाने के दिन है उनके आने के दिन नहीं है तो जब जरूरत अभी आते हैं जरूरत मैं भी जाता हूँ ये तीन स्पेशल दिन है उनको मुझे विवाह चाहिए मुझे जाना है चलो चलते और गुरुमा जी प्रवचन के समय और समय भी बोलते थे कि स्तुति वस करे स्मृति भी करे भारत वर्णे भजन तु हो पिता अहम या नाम नाम बंदे जो सालिंदे परम ब्रह्म नाम वाले को बनाया करते थे मैं पूछा कि गोपियों बसना बोले सब जुगल किसर की सेवा करना चाहते हैं एक प्रश्न का अनुभव में ताकि ऐसे नंदो बंदे अहम या नाम एक अधिकार देते हैं पर जब तक नंद बाबा यशोदा में कृपा ना हो तब तक मधुर रस का रस नहीं होगा बादशाह महाराज मधुर रस को बहुत प्रकार से पुष्टि करती है देखो जब कथा ये उसी पर जाती कहाँ जाती है नंद बाबा जाती है ना तो उसने इसे पुष्ट किया ऐसे और बहुत देखा किया था और बताया था सामो में एक बार परम रूपम कुली मधु कुली वाला वह कोई स्पेशल रकम धैम आत्म योग परम इसको याद रखना इसी श्लोक के अंदर समस्त सिद्धांत छिपा हुआ है उस समय समझता नहीं था जब गोपी महाराज बता रहे थे तो ये बात बहुत बोलते थे तो हम लोग इसको समझ सके तो ये अपना भजन साथ हम सब सकते हैं जब गुरु महाराज बात को कभी बहुत कुछ बोलने कहा कि भक्त लोग है बोलेंगे और सबसे तो सबसे बड़ी बात होगी हम महाराज के सिंह से सुने तो जो महाराज के सदगुरु ने जब बोलते बिताया उनके सिंह सुनने से ही जैसे ने बताया था महाराज जी से कभी दर्शन करना कभी-कभी मन में भी ये आक्षेप गुरुदेव के ऊपर प्रकट करता था गुरुदेव आपसे दीक्षा लिया किंतु आपसे हरिकथा सुनने के लिए कोई सुजोग नहीं मिला। क्योंकि शास्त्र में कहते हैं आदु गुरु खा हरिकथा श्रवण, पहले गुरु जी के मुखारविंद से हरिकथा श्रवण करनी चाहिए, किंतु आपसे तो श्रवण नहीं किया। उस समय गुरुदेव ने एक ही बात आपको बताया था जो आज तक हृदय में वही है। चैतन्य चैतामृत में इस रूप में कहते हैं दीक्षा गुरु के डरियो तुम्हें तारो रूप, शिक्षा गुरु के डरियो तुम्हें तारो स्वरूप, अंतरंग भक्त श्रेष्ठ यही हुई गुरु। दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु में कोई भेद मत करना, गुरुदेव के यही उपदेश। अर्थात गुरुदेव सदा सर्वदा यही कहते थे, जैसे महाराज जी साथ में कोई भेद मत करना, मेरी कथा ही मानो उनकी कथा और उनकी कथा ही मेरी कथा है, उनसे जो कुछ श्रवण उन्हीं में नहीं करेगा। और हम लोग देखा है गुरु श्री गुरुदेव किस प्रकार महाराज के सम्मान नहीं दे रहे थे। मैंने गुरु महाराज की जीवन चरित और पाठ को पूछ लिए, संस्कृत महाराज जी के मुखारविंद से ही श्रवण किया, विशेष करके गुरु महाराज के आविर्भाव तिथि के समय श्री महाराज जी कहते तुम लोग गुरु के क्या समझोगे, मैं तुम्हारे गुरु के साथ 50-60 साल संग किया, तुम्हारे गुरु के बारे में मैं मेरा अनुभूति जो है वही बता दो। श्री गुरु महाश्री महाराज जी गुरु महाराज जी अपने अपने जीवन चरित्र का बता देते दे। ये वैष्णव के 26 गुण जैसे अभी माधुर्य पद में श्री महाराज जी वर्णन कर दिए, वर्णन कर देते ये वैष्णव के 26 गुण जो है वो 26 गुण में 26 गुण ही अपने जो गुरु पाद पद में विद्यमान था। फिर बाद में अपने जो सप्त समसार पदार्थों ये समझते हैं गुरु महाराज के मुक्त होंगे। श्री महाराज जी तारे से तुम्हारे गुरुदेव बिना आदमी सुनी करोड़ में सुन करके एक मूर्त प्रतीक है। श्री महाराज जी कहते थे मैं जीवन में एक अनुभव करके देखा, हमारे गुरु महाराज एक समय कोई साल की बात की बात है 96 एक ऑफ फ्रांसिस और कुछ समय एक ईस्टर्न के लीडर आए थे, और फिर लोग गुरु महाराज के पास बैठे और गुरु महाराज के बोले ये आपने महाराज का नाम लेकर तो बड़े विदेश में जाते हैं और हमारे गुरुपाद की और शिष्यों के कुछ डिस्टर्बेंस करते हैं, आप तो गुरु नाम तो सुन लिए आचार्य है और आप उनसे कुछ बात बताइए जैसे डिस्टर्बेंस ना करे। गुरु महाराज जी इतने सुनते गुरु महाराज कर रहे हरे कृष्ण, दो बार तीन बार गुरुदेव देखते थे हरे कृष्ण, फिर वो व्यक्ति गुरु महाराज के कमरे से भगे नहीं। तब गुरु महाराज जी बहुत देर करके इन्हें बताया, देखो जब तो भी मैं गौड़ीय वेदांत समिति के आचार्य प्रेसिडेंट तथा हमारे गौड़ीय वेदांत के सारे अधिकार का तो कुछ भी है सब सेक्रेटरी के ऊपर दे दिया, आप एक काम कीजिए सेक्रेटरी के पास, सेक्रेटरी के पास जाइए और उनसे निवेदन कीजिए बस। गुरुदेव कह रहे हरे कृष्ण, ईश्वर निंदा तो देव कभी नहीं सुनते थे, वैष्णव चरित्र सुनाई पवित्र जे हिंद हिंस जाए, भक्ति विनोद नाथों में से जाए सदा रहे। गुरु महाराज जीवन में हम लोग यही देखा और कई इंग्लिशों के लीडर बाहर आ गए और बाहर आकर के वो कार्बन प्रथा के जो पेड़ था और उसके नीचे और मधुसूदन महाराज कृष्ण कृपा प्रभु वो कहकर झाड़ू दे रहे थे, गमछे पहन कर थे और उनने पूछा कि आपके गौड़ीय वेदांत समिति के सेक्रेटरी कौन है। बस देखो वो नागपुर में गए ना प्रवचन देने के लिए, वही गौड़ीय वेदांत समिति के सेक्रेटरी उसके बारे में मुझे जब तो बस यही करते हैं बस भाई, उसके बारे में तो वृद्ध में मैं बोलना चाहता था पर ऐसे करके वो चले गए और आए गए। इसी प्रकार गुरु महाराज हमारी मानद मैंने अपने अपने देखा साक्षात में देखा, जैसे पुत्रों की बात में डॉक्टर ने बताया गुरु महाराज सब समय बोलते थे श्री महाराज जी मेरा गार्जियन शब्द बना कर रहे थे, मेरा अभिभावक है जो कुछ है श्री महाराज जी। और हम लोग भी गौड़ीय वेदांत समिति से जितने सीनियर ब्रह्मचारी सन्यासी ब्रह्मचारी इन्हें भी आपने श्रवण किया था, जे गौड़ीय वेदांत समिति के सूत्र में तीन ही है ब्रह्म विष्णु और महेश्वर, जिस शास्त्र में कहते हैं कहते हैं गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव पर ब्रह्म तस्मिन श्री गुरु में वैसे भी इस प्रकार मायावाद नहीं, अद्वैतवादी लोग
अपने कक्षा करते हैं फिर इसमें दिखाई पड़ता है गुरुदेव वो ब्रह्मा के स्वरूप है। जैसे ब्रह्मा शिष्य के कार्य है उसी प्रकार गुरु महात्मा शिष्य के हृदय में मंत्र बीज आदि दे करके उनके भक्ति लता बीज को जो है अंकुरित करा दिए एक ब्रह्म के कार्य है। मेरे गुरु महात्मा के कार्य थे ये ब्रह्म और शिव जी के कार्य क्या है संहार करना और इस अतिरिक्त महाराज जी का ये जैसे नारायण समस्त जीवों के पालन पोषण करते हैं सिर्फ महाराज जी हरि कथा श्रवण करके और अमृत के हृदय में शुद्ध भक्ति देखते और पालन पोषण करते सिर्फ गुरुदेव करते जो कुछ भी कुछ हो जाए सब महाराज जी पर प्रेरणा करते। कोई भी दीक्षा मैं अपने जीवन की अनुभूति बता दूं दीक्षा के समय हम लोग कई सौ देश व्यक्ति थे नवदीप परिक्रमा के समय गृह का ब्रह्मचारी था हम लोग जब गुरु महाराज के पास समय में गए दीक्षा लेने के समय गुरुदेव ने कहा पहले नारायण महाराज के आदेश होते उनके आदेश बिना मैं किसी को दीक्षा नहीं दे सकता जो आचार्य थे तथापि कभी अपने जीवन में ये उपमान नहीं रखते थे मैं आचार्य सब कुछ जो भार है सब कुछ महाराज के ऊपर दे देते थे और उन्होंने क्या करते थे और ये उपदेश देते थे उनके आदेश पालन करो उनके ही जो कुछ भी है वही सत्य है। इसलिए गुरु महाराज जी मैंने देखा जब श्री महाराज जी मथुरा से नवदीप लौट रहे थे गुरु महाराज श्री महाराज जी किस प्रकार आदर सेवा आदि और उनके सम्मान करते थे ये गुरु भ्रत के प्रति ऐसे आदर सेवा सम्मान आज तक किसी मन में किसी सब हम लोग नहीं देखते। मैंने देखा सच्चा गुरुदेव सत्य को धन्यवाद प्रणाम करते महाराज जी जब से जब प्रवेश करते थे श्री महाराज जी और उस समय गुरु महाराज जी बालंग से निकल करके आते थे उस समय और आगे सत्संग धन्यवाद करते थे ये सब देखने के सुयोग मिला वैष्णव के किस प्रकार व्यवहार ये सब वैष्णव के व्यवहार हम लोग देखते देखते जगत जीवन में शिक्षा देते हैं वैष्णव के किस प्रकार जैसे कुछ साल पहले गुरुदेव ने हॉस्पिटल में वो एक श्लोक एक भक्त ने खाते की तो व्याख्या करे थे वैष्णव देविया चरणे कोई वो हृदय रो बंधु जानी वैष्णव देख करके मैं सत्संग धन्यवाद करेंगे और अपने जो हृदय के मित्र जानेंगे। गुरुदेव जब श्री महाराज जी जब इटली में इसी शब्द को अटा भक्त ने इस कीर्तन के व्याख्या कर रहे थे मैंने देखा महाराज के हृदय में कैसे कैसे पूरा आदि ये समस्त भाव मैंने देखा और वही चिंतन करने लगा ये आज से कम से 20-22 साल पहले श्री महाराज जी हमारे गुरु महाराज के प्रति कैसे आदर करते थे। गुरु महाराज जी और श्री महाराज जी जो एकत्रित होते थे उनकी उनकी आवाज आलोचना उनकी क्रिया आदि ये समस्त अलौकिक ये समस्त सिद्धांत यहाँ पर भी कभी कभी करते थे गुरु महाराज जी हास्य परिहास करते श्री महाराज जी हास्य परिहास करके गुरुदेव से कहते थे आप बच्चे बच्चा पैदा करते हो और मैं बच्चे के टट्टी साफ करता हूँ। देखो गुरु वैष्णव के कैसे को कहा जाता है प्रेम कुंदन कहा जाता है प्रेम फिर गुरु महाराज जी हंसते थे श्री महाराज जी इस प्रकार त्रिविक्रम महाराज जी एक ऐसे बात बोलते थे कभी कभी हम लोग समझ नहीं पा रहे थे जब पहले पहले जब गुरुदेव के थे श्री महाराज जी साथ विक्रम के साथ महाराज साहब मिलते थे कभी लगते थे झगड़ा चल रहा है किंतु वास्तव नहीं है किंतु हम प्रेम सहित सौहृद भाव गुरु भ्रात के प्रति ऐसे सौहृद भाव होने से तब तो वैष्णव बता होता है। इसलिए तो श्री महाराज जी अपने प्रवचन में कहा था जे जब तक श्री गुरुदेव पवन महाराज जी जब तक रहे तब तक कोई मिलांश समित में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो सिर ऊंचा करके कुछ बोले। गुरुदेव हमें अपने गुरुदेव के उठा से देख गुरुदेव कर देखा जब गुरुदेव और श्री महाराज जी एक ही स्थान पर बैठते थे कि सबसे गोल्ड मोड में राधा सुनने के समय गुरुदेव श्री महाराज जी कहते महाराज आप मुझे बताइए। गुरु महाराज जी आप मुझे कहिए भक्ति के ऊपर बोले आप है आप है। बार बार बोलने पर गुरु महाराज जी राधा तत्व बोलते हुए केवल दो शब्द भक्त गुरु ठाकुर के ऊपर बोले बोलते थे क्या राधा अमित राधा सबको पाती है सदा चेतन चेतन भजे इसी प्रकार गुरु महाराज बोलते थे बस इतना ही समझो ज्यादा वस्तु के ऊपर उन्हें बोलते थे थोड़ी अल्प भाषा में मितंच सारंच और इतने सार संक्षेप में बोलते थे। कभी कोई उमा दी मैंने देखा गुरु महाराज के कुछ बोलते थे बोले और कुछ राधा तत्व बोलो बोले नहीं नहीं इसको छुपा करके रखना है। गुरुदेव और हम भाषा में भक्ति गुरु ठाकुर के कीर्तन की व्यक्त करके एक सौ डेढ़ सौ कथा दी बोल सकते हैं। आज गुरु महाराज के चरण कम और उनकी जो कुछ भी है जो कुछ साक्षात मूल पर जो कुछ भी प्रकाश आप श्री महाराज के हृदय में महाराज के संत में सब कुछ हम लोग दर्शन करते हैं। आज महाराज के मुख्य आशीर्वाद करें गुरुदेव हम लोग आशीर्वाद करें जय जन्म जन्मांतर में उनकी सेवा प्राप्ति हो वंशा को
हाथ कब तक आए मतलब पूरा नदिया में तुमने एकदम
एकदम सबसे टफ नंबर तुम्हारा आया है, लेकिन उनको इतना विश्वास रखा अपना ऊपर में, इसलिए भक्ति व्यवस्था केशव गोस्वामी महाराज और नरहरि प्रभु ये दोनों को आनंदी और प्रभुपाद प्रसाद पाने का बाद शांति का बर्तन था, ग्लास बर्तन बर्तन था, कहते इन्हीं को ही वो बर्तन मिलता था उसको परिष्कार करने के प्रभुपाद का, इसलिए उन्होंने अच्छे तरह से जो आटा का जो कसरत होता है उससे बात कर करके सुंदर करके साफ करते थे, और कभी कभी प्रभुपाद बैंक में जो बैठते थे इन्होंने जो मटर होता है उसका छिलका उतार करके प्रभुपाद लाते थे, प्रभुपाद स्वयं इनको हाथ से प्रभुपाद स्वयं सेवा ग्रहण करते थे, एकदम के खाने के लिए देते थे। इनका घर में एक विशेष प्रसिद्ध है, महाराज कभी कभी मुझे बोले देखो जिस समय हम पढ़ रहे थे मेरे साथ में बहुत सारे छात्र पढ़े, लेकिन मैं एक अध्याय में रह गया और मेरे साथ में जितने को जितने पढ़ रहे थे सबके सब चले गए, सारे रत्न कहाँ चले गए, तो वो कहते थे मैं कैसे रह गया और सब कैसे चले गए, तो इसलिए मैं रह गया क्योंकि मैं बचपन में जब मंदिर में आया इनका जीवन में नारद जी का उदाहरण सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। नारद जी जब व्यास जी को बता रहे हैं हे व्यास वास्तव में जीवन में जीव को शांति सुख कैसे प्राप्त होता है, केवल जीवन में वैष्णव सेवा होगा और किसी दूसरे कोई उपाय नहीं। हाँ कैसे नारद जी बचपन में संतों की सेवा किया, कहते हमारे भक्ति हमारे सज्जन जो उनका नाम था सज्जन सेवक, उनका नाम और उनका काम एकदम बराबर था, सचमुच से सज्जन मतलब सेवकों में जो सज्जन है सर्वश्रेष्ठ है, इन्होंने वैष्णवों के लिए सेवा एक बहुत बड़े आदर्श सेवक थे, वैष्णव लोग जो प्रसाद खाते थे उनके लिए आसन बिछाना, केले के पत्ते काटकर उसमें प्लेट खाने, केले के पत्ते ला करके धोना रख देना, उसमें नमक मिर्च नींबू देना, वैष्णव लोग जो प्रसाद खा लेते थे उनको जाना को साफ करना, सब्जी काटना, फूल चयन करके लाना, ये अमनिया करना सब्जी काटना, तो इतने सुंदर सब्जी के अमनिया करके काटते थे, ऐसे एक छोटा हो गया एक बड़ा हो गया अपूर्व रूप में, फिर उनका इतना सेवा आदर्श था, इतने सेवा आदर्श था, उन्होंने वैष्णव को उन्होंने इतने सेवा की है, हर वैष्णव मेरे ऊपर अपनी सेवा को द्वारा संतुष्ट होकर के अलग अलग एक सिद्धांत मैंने सीखा दिया, सब वैष्णव से अलग अलग सिद्धांत उन्होंने जीवन में सीखा प्राप्त किया, फिर कैसे प्राप्त किया कभी केवल वैष्णवों का सेवा करके। देखो एक विशेष बात है, क्योंकि माया आत्मा प्रवचन जब मैं वैसे प्रीण के तरह लगता तसे इसे आत्मा प्रीण कर सा, ये क्या ब्रह्म ज्ञान है, ये क्या कोई साधारण ज्ञान नहीं, हम अपना मेधा को करा पांडित को करा पर उनको किसी वैष्णव से हम ग्रहण कर लेंगे, यदि वस्तु जीव का प्राप्त कर सकता है तो जब हम निष्कपट रूप में गुरु वैष्णव का सेवा करें ठाकुर को सेवा करें, जब ठाकुर जी हमारे सेवा को करा हाँ संतुष्ट हो जाए और वो स्वयं प्रसन्न होकर के हमें कुछ देना चाहेंगे तभी हम जीवन में कोई वस्तु का हम ग्रहण कर सकते हैं, नहीं तो ये विद्या ब्रह्म विद्या को जगत में कोई प्राप्त कर ही नहीं सकते। देखो आदर्श रूप में देखो हमारे महाराज लोग हैं, अपनी कृष्ण महाराज तीर्थ महाराज देखो, हमारे माधव महाराज देखो, गण महाराज देखो, जो जितने सेवा कर रहे हैं उनका हृदय में तत्व ज्ञान की इतना स्फूर्ति है, जो सेवा नहीं कर रहे हैं भले हमने देखा दर्श
करते जाए, दुनिया फट भर के पागल हो जाए, लेकिन हृदय में कोई वस्तु उपलब्ध नहीं होता है। अगर कुछ जोर जबरदस्ती पढ़ने लगे जीवन में कोई काम भी नहीं किया। इसलिए
भावना गोस्वामी महाराज को जो जीवन है संपूर्ण सेवा वाले जीवन है।